आशाओं के दीप जला।
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
सारे देवताओं में जो सबसे महान है, सारे देवताओं में जो सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है। सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है। सारे देवताओं में जो सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, क्षमादायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम।
शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, क्षमादायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम।
यीशु नाम में है छुटकारा, सारे जहां प्यारा एक नाम है। सारे जहां में तो बस प्यारा एक नाम है।
सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है। सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है।
रफा बन के रोगों से चंगा करता यीशु नाम, क्षमा बन के हर क्षण में संग रहता यीशु नाम।
रफा बन के रोगों से चंगा करता यीशु नाम, क्षमा बन के हर क्षण में संग रहता यीशु नाम।
यीशु से महान है, सारे जगत में जो वेदों से महान है।
सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है। सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है।
हीरे बन के हर घटी को पूरा करता यीशु नाम, शालोम बन के पल पल में शांति देता यीशु नाम।
हीरे बन के हर घटी को पूरा करता यीशु नाम, शालोम बन के पल पल में शांति देता यीशु नाम।
यीशु नाम में है आनंद, सत्य और विश्वास का जहां में ये पैगाम है। सत्य और विश्वास का जहां में ये पैगाम है। सर्वश सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है, सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है। सारे देवताओं ने जो सबसे महान है, सारे देवताओं ने जो सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है वो यीशु जिसका नाम है, सर्वशक्ति।
अधीनता को स्वीकार करने का सबसे उत्तम उदाहरण हम पवित्र शास्त्र बाइबिल में पाते हैं, और वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उनका संपूर्ण पार्थिव जीवन परमेश्वर की अधीनता में बीता, यहाँ तक कि स्वयं उन्होंने अपने ही मुख से कहा था कि मैं पिता की इच्छा पूरा करने इस पृथ्वी पर आया हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में भी वे इस बात का स्मरण दिलाते रहे। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने हमें ये सिखलाया कि कलीसिया किस प्रकार से अपने प्रभु की अधीनता में बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें मेरा पिता पसंद करते हैं मैं उन्हीं बातों को किया करता हूँ, तथा जो काम तूने मुझे दिए थे मैंने उसे पूरा कर लिया है। वे संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के अधीन थे, और यही पैटर्न कलीसिया के सम्मुख भी रखा गया है कि पत्नी अपने पति की अधीनता को हर्ष के साथ स्वीकार करती रहे। इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। इफिसियों 5:22-24। प्रिय श्रोता, अधीनता के संबंध में संत पौलुस 23 में एक विशेष बात कहता है कि और आप ही देह का उद्धार करता है। यानी देह का उद्धार करता कौन है, मसीह यीशु या पति? मेरे विचार से दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से मसीह अपने शरीर यानी अपनी कलीसिया के उद्धार करता है, उसी प्रकार से पति अपनी पत्नी का रक्षक है। मसीह ने कलीसिया को नाश होने से बचाने के लिए जिस प्रकार से अपनी जान दे दी, इसी प्रकार से एक विश्वासी पति को इस बात की जिम्मेवारी दी गई है कि वह अपनी पत्नी को नष्ट होने से बचाए रखे, उसकी जरूरतों, भावनाओं तथा देखभाल संबंधी जरूरतों को प्रेम पूर्वक पूरा करता रहे। इस प्रकार यहाँ पर पति पत्नी संबंधी बातों की तुलना मसीह तथा कलीसिया संबंधी बातों तथा जरूरतों के साथ वचन में की गई है। सबसे अंतिम तथा मुख्य बात ये है कि पत्नी को अधीनता में रहने के लिए वचन बाध्य करता है। हम जानते हैं मसीह कलीसिया का सिर है, इसलिए कलीसिया को उसके अधीन में रहना चाहिए। इसी प्रकार से पौलुस कहता है कि पत्नी को भी अपने पति की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। परंतु कलीसिया को किस प्रकार से मसीह के अधीन रहना चाहिए? उत्तर है हरेक बातों में। फिर पत्नी को किस प्रकार से पति की अधीनता में रहना चाहिए? इसका भी उत्तर यही है, हरेक बातों में। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पति एक अत्याचारी शासक के रूप में पेश आए, बल्कि पत्नी की अगुवाई उसे प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हो सकता है कि उसका पति अविश्वासी हो, फिर भी उसे अधीनता में ही रहना चाहिए। इसी प्रकार से हो सकता है पत्नी अधीनता में रहने वाली नहीं हो, फिर भी चाहिए कि पति उसके साथ प्रेम पूर्वक पेश आए। दरअसल में इस प्रकार की शिक्षा को लोगों से सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ लोग अधीनता की बाध्यता को उपयोग करते हुए अपनी पत्नी पर शासन चलाते रहते हैं, जो अगुवाईपन की दुर्बलता को दिखलाता है, और ऐसे पति समाज के समक्ष एक गलत नमूना प्रस्तुत करते हैं। ऐसी बातों को लेकर शैतान विश्वासी पतियों को गुमराह करने का प्रयास करता है, परंतु गलत लोगों के कारण हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करें, परंतु एक सही नमूना प्रस्तुत करें, और लोग हमारे परिवार में तभी परमेश्वर की उपस्थिति तथा उनकी आशीषों को देख पाएंगे। इस प्रकार की अधीनता को जीवन के हर एक क्षेत्र में पत्नी बनाए रखे तथा वचन के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करे, और इस प्रकार का अनुशासन उन्हें आत्मिक रूप से भी बचाता रहेगा। ऐसी स्त्रियों का परमेश्वर आदर करते हैं, क्योंकि ये आज्ञा उन्हीं की ओर से उन्हें दी गई है। आशा करता हूँ कि अधीनता के इस मिशन या अभियान में वे यानी पत्नियाँ जयवंत रहेंगी। अल्बर्ट बार्नीज के शब्दों में, परिवार में परस्पर प्रेम तथा विश्वास रहने से पति की आशाएं पत्नी के लिए जीवन की व्यवस्था बन जाती है। उनके बीच स्वर्गीय शासन की उपस्थिति रहती है। प्रिय श्रोता, क्या आप ऐसा परिवार कायम करने का प्रयास करेंगे? क्या पति तथा पत्नी दोनों परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर को महिमा देना चाहेंगे? परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09835983759। पुनः एक बार 09835983759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।